कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथ पतित पावा कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीराज एक काल को था गिला गोरा नटराज पाषाण कोटि भो माथा अनाले पशिव गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाब शेषाब संगीरा संगे जे कैलो बिलास से संग न पाइया कांदे न रोता मदास जे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नितय गौर हरि बोल
ललोचंदास ठाकुर तेरे भाव दीदी महामहोत्सव की हरे कृष्णा। तो जो भजन गाया गया है उसके शब्द इस प्रकार से हैं, जियानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो अपनी प्रचुर करुणा के कारण प्रेम धन लेकर आए, कहाँ से लाए? गोलोक धाम से। हेना प्रभु को था गेला लोचनदास ठाकुर। तो ऐसे लोचनदास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन? कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ मेरे दोनों भट्ट हैं, दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ है? कहाँ कविराज और कविराज कहाँ है? कविराज कृष्णदास कविराज। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। और अचानक एक काले मतलब अचानक ही कहाँ चले गए? गौर वर्ण के नर्तकों के राजा। कौन है नर्तकों के राजा? हाँ, श्री चैतन्य। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो। अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ू अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पावो। तो किस रास्ते से गुणों के समुद्र श्री गौरांग को मैं प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, जितने संगीत है गौरांग महाप्रभु के संग में बिलास किया उन्होंने, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पाकर के नरोत्तम दास क्रंदन करते हैं। तो लोचन दास ठाकुर के विषय में गौड़ी वैष्णव चरितामृत में कुछ बातें लिखी हैं, उनको हम पढ़ के सुनाएंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, उसके बाद कुछ अन्यत्र से भी सुनेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लोचनदास ठाकुर श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे, और नरहरि सरकार ठाकुर श्री गौरांग के परम प्रिय पार्षद हैं, केवल प्रिय नहीं परम प्रिय पार्षद हैं श्री गौरांग के, उनके शिष्य हैं लोचनदास ठाकुर। ये परिचय सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण परिचय लोचनदास ठाकुर का ये है। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में नरहरि सरकार ठाकुर के बारे में इस प्रकार लिखा है, मेरी यही आशा है कि मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरण कमलों के निकट रहूं और अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचन दास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से इन्हें मुझे गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। तो ये जो है लोचन दास ठाकुर ने ये शब्द लिखे हैं चैतन्य मंगल के प्रारंभ में कि अपने गुरु नरहरि सरकार की मैं अनुमति प्राप्त करूं ताकि मुझे गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की शक्ति प्राप्त हो। श्री नरहरि सरकार ठाकुर मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूं, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। तो चैतन्य मंगल के प्रारंभिक शब्द हैं। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की जिसमें गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। तो तीन ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं श्री चैतन्य के चरित्र के बारे में। तो एक तो चैतन्य चरितामृत जो लिखा किसने, कृष्णदास कविराज ने लिखा, और दूसरा ग्रंथ चैतन्य भागवत जो किसने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर ने, और तीसरा ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल किसने, लोचन दास ठाकुर ने। तो तीनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। वृंदावन दास कृष्णदास कविराज ने बहुत ध्यान रखा कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का वर्णन किया है विस्तार पूर्वक, उन लीलाओं का कृष्णदास कविराज ने या तो वर्णन ही नहीं किया या वर्णन किया है संक्षेप में, इस बात का बहुत ध्यान रखा है। और चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने भी कुछ ऐसी लीलाएं लिखी हैं जो जिन लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है, चैतन्य भागवत में भी नहीं है, और बहुत मधुर लीलाएं हैं श्री चैतन्य की। इन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णु प्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। तो विष्णु प्रिया के साथ श्री चैतन्य की जो बातें हुई तो इन बातों का वर्णन कृष्णदास कविराज ने नहीं किया। श्री चैतन्य ने जब संन्यास लिया तो इसका वर्णन कृष्णदास कविराज ने तो किया ही नहीं, या हो सकता किया हो तो बहुत संक्षेप में, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तार से किया। और सची माता के साथ क्या बातें हुई श्री चैतन्य की, इनका विस्तार से वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, लेकिन विष्णु प्रिया जी के साथ क्या बातें हुई इसका जो है उल्लेख नहीं है चैतन्य भागवत में। तो जिस रात्रि को चैतन्य ने संन्यास लिया तो उस रात्रि को विष्णु प्रिया के साथ क्या बातें हुई और उन्होंने अपना विष्णु रूप दिखलाया, चतुर्भुज रूप दिखलाया और बहुत ही गोपनीय रहस्य बतलाए विष्णु प्रिया को, तो ये वर्णन इसमें है, किसमें, चैतन्य मंगल में है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचन दास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग और लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये जो चैतन्य मंगल ग्रंथ है ये बंगाली भाषा में बहुत ही मधुर और इसके जो शब्द हैं ये बड़े कोमल हैं और संगीत के अनुसार रचना हुई है। जनसाधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। तो ये जो चैतन्य मंगल ग्रंथ है ये ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ। जन सामान्य में चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है ये ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ क्योंकि संगीत के साथ में इसका जो है पब्लिक में जब गान किया गया तो शब्द भी बड़े सरल हैं बंगाली भाषा में। अब हम लोग बंगाली नहीं हैं तो हमारे लिए वो कठिन शब्द हो सकते हैं, लेकिन वैसे बंगाली भाषा में बड़े सरल शब्द हैं और उसमें संगीत की लय के साथ जब इनको गाया जाता है तो जो सामान्य जो बंगाली भाषी लोग हैं तो वे इसका बहुत आस्वादन कर पाए और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं उसी प्रकार गौरी वैष्णव अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। तो जैसे रामायण विशेष रूप से तुलसीदास का जो रामचरितमानस है तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जितने हिंदी भाषी स्थान हैं वहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं और जनता में काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में जनता जो है इनकी कथाओं को सुनती है। तो इसी प्रकार से बंगाल में या बंगाली भाषी जनता के बीच में ये जो ग्रंथ है ये बहुत लोकप्रिय हुआ। इसकी भी कथा जो है बहुत जगह जगह पर सुनाई जाती थी और सुनी जाती थी। लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु व गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे हैं। तो इसके अलावा लोचनदास ठाकुर ने गीत भी लिखे हैं, गीतों की भी रचना की है। चैतन्य मंगल ग्रंथ तो एक है ही है, इन गीतों की भी रचना की है जिनमें श्री चैतन्य नित्यानंद और गौरीदास पंडित इनकी जो है प्रशंसा है। लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तों को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये भजन जो लोचनदास के भजन है इसमें राधा रानी जो कि गदाधर पंडित के रूप में भी प्रकट हुई श्री चैतन्य लीला में इनके शरण ग्रहण करनी बहुत आवश्यक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। तो ये जो है चूँकि बहुत लोकप्रिय ग्रंथ था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी प्रेस में इसको छापा, है ना। नहीं तो प्राचीन काल उस समय जो है प्रेस का प्रयोग नहीं होता था और ये टेक्नोलॉजी जब नहीं आई थी तो हाथ से लिखे जाते थे इन ग्रंथों को, हाथ से लिखा जाता था और आप जानते हैं हाथ से लिखने में कितना परिश्रम होगा और उस परिश्रम में भी केवल एक ही ग्रंथ लिख पाएंगे और वो भी बहुत भारी और बहुत बड़े आकार का होगा, हाथ से लिखेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने छपाई का जो है प्रयोग किया और इस तरह से अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक संख्या में ये ग्रंथ छापे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। श्रील प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे, परम करुण गाते हुए श्रील प्रभुपाद गौरांग प्रेम सिंधु में डूब जाते थे। प्रभुपाद भी गाते थे परम करुण बहु द्विजन निताई गौरचंद्र। तो निताई गौरचंद्र ये दोनों प्रभु बहुत करुण हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद गाते थे तो अनुभूति करते थे क्योंकि इसमें लोचनदास ठाकुर की बड़ी गहरी अनुभूति है। तो इन शब्दों में प्रभुपाद जो है निताई गौर चंद्र की अनुभूति करते थे, उनकी करुणा की अनुभूति करते थे। तो प्रभुपाद क्या होते थे, डूब जाते थे उस प्रेम में, डूब जाते थे। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी है, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं कि हे भाई केवल दृढ़ विश्वास और श्रद्धा सहित श्री चैतन्य नित्यानंद की आराधना करो, ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन और नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा, अतः व्यक्ति को दृढ़ विश्वास और श्रद्धा सहित कीर्तन और भजन करना चाहिए। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्री लोचनदास ठाकुर तिरो भाव तिथि महामहोत्सव की इनके विषय में और भी सूचनाएं हैं। इनका जो जन्म स्थान है एक गांव है जिसका नाम है कुग्राम, कोग्राम इस गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बंगाल के बर्दवान जिले के अंदर है। माता पिता की एकमात्र संतान थे और घर बहुत संपन्न था। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, कि जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है वो पवित्र और धन संपन्न घर में जन्म लेता है। लेकिन लोचनदास ठाकुर तो योग भ्रष्ट नहीं है, ये तो भगवान गौरांग के नित्य पार्षद हैं, है ना। तो जब योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेता है ऐसे घर में, तो भगवान के पार्षद भी लें तो इसमें क्या आश्चर्य है। ननिहाल यही था, इसी गांव में इनका ननिहाल था। ननिहाल मतलब नानी और नाना, मतलब इनकी जो माता हैं, माता का विवाह है मायके में ही हुआ। जिस गांव में माता का जन्म हुआ था उसी गांव में माता का विवाह हुआ। तो ननिहाल इसी गांव में थी, तो जो बूढ़े नाना नानी थे वे भी बहुत प्यार करते थे। तो जन्म से इनको बहुत प्यार मिला, माता पिता का प्यार मिला, क्योंकि एकमात्र संतान। और नाना नानी का भी बहुत प्यार मिला तो इस तरह से बहुत प्यार में बढ़े। पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, पढ़ने लिखने का अवसर, क्योंकि बच्चे को पढ़ने लिखने का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, जो बहुत प्रेम करते हैं माता पिता, तो बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई का कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो कष्ट नहीं दिया। लेकिन इनका जो आकर्षण था, ये ऐसा था कि बहुत जल्दी पढ़ाई लिखाई ये सीख गए। पूर्व संस्कार के कारण विषयों में इनका मन नहीं लगता था, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं विषय भोगों में। माता पिता बहुत प्यार करते हैं, विषय भोग देते हैं बच्चे को, नाना नानी भी तो क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बिगड़ने के बहुत अवसर थे, लेकिन यही नहीं बिगड़े, क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसे इनके प्रबल थे कि विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी इनका मन विषयों में नहीं लगता था। जब खेलते थे बच्चों के साथ तो मिट्टी के महल बनाते थे और फिर तोड़ करके कहते कि ये संसार ऐसा है। तो प्रैक्टिकल दिखाते हैं संसार की रचना किस प्रकार से हुई है। तो मिट्टी के महल बनाते और फिर तोड़ कर कहते ये भौतिक संसार इसी प्रकार का है, आज है और कल नहीं है। लोचनदास नहीं चाहते थे कि विवाह में बंधे, लेकिन माता पिता ने 11 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया। स्त्री लक्ष्मी के समान रूपवती थी और गुणवती थी, लेकिन लोचनदास का मन नहीं लगा। अपनी पत्नी में इनका मन नहीं लगा। पत्नी अगर बहुत रूपवती हो और गुणवती हो तो ये फिर व्यक्ति के लिए बड़ा बंधन का कारण बन जाती है कि वो स्त्री में आसक्त हो जाए। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी ये नहीं बंधे, ये नहीं उसमें आसक्त हुए, पत्नी में आसक्त नहीं हुए। श्रीखंड में चैतन्य भक्त प्रवर नरहरि सरकार ठाकुर रहते थे। तो इनके गांव से कितना दूर है मैं नहीं जानता, कोई जानते को ग्राम से कितना दूर है श्रीखंड? तो जितना भी दूर हो, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के श्रीखंड में ये गए नरहरि सरकार ठाकुर से शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए। नरहरि सरकार ठाकुर प्रेमी भक्त भी थे और साथ साथ सर्वशास्त्रों के विद्वान थे। ऐसा सुयोग बहुत कम मिलता है, जो बहुत विद्वान होते शास्त्रों के वो प्रेमी भक्त नहीं होते, और कोई प्रेमी भक्त होते हैं तो शास्त्रों के विद्वान नहीं होते। लेकिन अगर दोनों योग मिल जाए तो बहुत विशेष बात है। तो नरहरि सरकार में दोनों का योग था, सब शास्त्रों के विद्वान भी थे और प्रेमी भक्त थे। तो माता पिता की आज्ञा से वहीं पर रहने लगे, दीक्षा भी प्राप्त कर ली और शिक्षा भी वहीं ले रहे हैं, है ना। तो माता पिता का भी जो है इतना विश्वास था नरहरि सरकार ठाकुर में कि अपने पुत्र को ऐसे दे दिया कि अगर जीवन भर भी रहे नरहरि सरकार ठाकुर के साथ तो भी हमारा जीवन सफल है। माता पिता जो है मतलब इतने आश्वस्त थे नरहरि सरकार ठाकुर के प्रति कि उनका पुत्र अगर हमें भी भूल जाए, नरहरि सरकार ठाकुर की सेवा में अगर हमें भूल जाए तो भी हमारा बड़ा लाभ है। तो ऐसे माता पिता थे। नरहरि सरकार ठाकुर का ऐसा प्रभाव था कि इनके माता पिता इतना विश्वास करते थे। और नरेंद्र सरकार ठाकुर की शिक्षा के द्वारा इनका जो वैराग्य था वो कृष्ण अनुराग में बदल गया। तो यही सफलता है, जीवन की सफलता ही है, नहीं तो विरक्ति का कोई लाभ नहीं। आपके अंदर विरक्ति है लेकिन कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है तो वो वैराग्य व्यर्थ है। तो वैराग्य जो है जब कृष्ण अनुराग में बदल गया नरहरि सरकार ठाकुर की कृपा से, तो ये असली गुरु की कृपा है। सब कुछ भूल गए, माता पिता को भूल गए, पत्नी को भूल गए, गांव घर सब भूल गए। माता पिता भी प्रसन्न है कि मेरा पुत्र सब कुछ भूल गया, माता पिता भी प्रसन्न है ना कि सुयोग्य पंडित का शिष्य है, हमारा जो पुत्र है वो एक योग्य पंडित का शिष्य है, इस बात का ये जो है गौरव मानते थे। लेकिन पत्नी पूर्ण युवती हुई, अब माता पिता को चिंता हुई, वो चिंता उचित थी। माता पिता की चिंता उचित थी क्या, कि इनकी पत्नी जो है अब पूर्ण युवती हो गई, उसे घर में लाना चाहते हैं, माता पिता घर में लाना चाहते हैं, है ना। तो स्त्री की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है, वो बचपन में पिता के संरक्षण में रहे और जवानी में पति के संरक्षण में रहे, बुढ़ापे में अगर पति नहीं है तो पुत्रों के संरक्षण में रहे। तो माता पिता को चिंता हुई और वो चिंता उचित थी, तो अपनी बहू को घर में लाना चाहते थे और इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाती थी। पिता थे कमलाकर, इनके पिता, इनके पिता का नाम क्या था, कमलाकर, लोचनदास ठाकुर के पिता का नाम कमलाकर था। तो कमलाकर ने नरहरि को बताया कि आप विचार करिए कि क्या करना चाहिए, हमें तो कोई शिकायत नहीं है कि हमारा पुत्र आपके साथ रहता है, लेकिन जो पत्नी है हमारे पुत्र वधु है तो वो जवान हो गई, उसको हमें घर में रखना है, तो आप इस पर विचार करिए कि क्या करना है। तो नरहरि सरकार ने आज्ञा दी कि तुम जाओ ससुराल में और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में रहो, ये आज्ञा दी। तो गुरु की आज्ञा से आमोदपुर गांव में गए, ससुराल आमोदपुर है, वहां गए तो घर याद नहीं आ रहा था, 11 साल की अवस्था में शादी हुई थी तो एक बार गए थे, उसके बाद तो कभी गए नहीं, और पता नहीं कितने साल अब बीत चुके हैं तो घर याद नहीं आ रहा था। तो गांव में प्रवेश करते ही एक युवती मिली, उससे इन्होंने पूछा, माताजी, वो अपने ससुर का नाम बताया कि उनका घर कहाँ है, माताजी उनका घर कहाँ है। तो उस युवती ने हाथ से इशारा करके बता दिया कि कहाँ है घर, और वो चली गई। और जब ये घर में पहुंचे तो सब कुछ बातचीत हुई और भोजन खाना पीना हुआ, और जब पत्नी से मिले तो बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि जिसको माता जी कहा था वो कौन है, इन्हीं की पत्नी है, बहुत चिंतित हो गए, भयभीत हो गए। इसी प्रकार की घटना है, जैसे कुंती महारानी ने जब अर्जुन से कहा था कि तुम जो भी पुरस्कार जीत के लाए हो पांचों भाई बराबर बांट लो आपस में, अर्जुन ने माता को माता का कुतूहल बढ़ाने के लिए ये कहा कि माता देखो हम कैसा अच्छा पुरस्कार जीत करके लाए हैं। और माता कुंती आए देखने के लिए आए, ये माता कुंती बहुत थकी थी, विश्राम कर रही थी, तो उन्होंने विश्राम करते ही घर के अंदर से बोल दिया कि तुम जो भी पुरस्कार तुम लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। अब अर्जुन चिंतित हो गए, पांचों पांडव चिंतित हो गए, माता कुंती चिंतित हो गई कि अरे क्या हो गया, देखो ऐसा धरातल है, प्राचीन काल के वैष्णवों का ऐसा धरातल है कि धोखे से भी अगर कुछ निकल जाए मुंह से तो उनको चिंता हो जाती है, उनको चिंता होगी कि अब कैसे ये पूरी होगी बात। और फिर व्यास जी स्वयं आए उनकी चिंता दूर करने के लिए और कहा कि आपके मुंह से जो निकला है वो उचित है, सर्वथा उचित है, क्योंकि द्रौपदी के जो है भाग्य में ये पांचों भाई जो है पति के रूप में लिखे हुए हैं। और व्यास जी ने राजा द्रुपद को भी समझाया कि पूर्व जन्म के अनुसार इनका जो है निश्चित है कि द्रौपदी जो पांचों की पत्नी बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हम कोई बात ऐसी ना बोलें जो कि आगे चल करके बदल जाए। तो पत्नी से मिले, अब दोनों भयभीत हो गए, दोनों भयभीत, पत्नी भी भयभीत हो गई और ये भी भयभीत हो गए कि अब कैसे इसको पत्नी के रूप में मैं स्वीकार करूं, और पत्नी भयभीत हो गई कि इनको कैसे मैं पति रूप में स्वीकार करूं। रात भर दोनों रोते रहे। फिर पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं भोग की भूखी नहीं हूं, अगर आप जीवन भर अगर आप सहवास नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मुझे सेवा का अधिकार दीजिए, अपने साथ केवल रखिए, सेवा का अधिकार दीजिए। तो सूर्योदय से पहले ही ये दोनों ससुराल से निकल गए और माता पिता के साथ रहने लगे, और जब माता पिता का देहांत हुआ तो पूरी संपत्ति बांट दी, गांव में बांट दी, और गांव के बाहर एक पर्णकुटी बनाई, पर्णकुटी बनाई, और उसी में जो है रहते थे, भजन करते थे, और वहीं रह करके उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की। और जब ये गान करते थे चैतन्य मंगल का, तो पत्नी सुना करती थी इनके मुख से चैतन्य कथा और हर्ष के आंसू बहाती थी। इन्होंने 7 ग्रंथ और भी लिखे हैं चैतन्य मंगल के अलावा। एक तो है दुर्लभ सार, दूसरा है वस्तु तत्व सार, तीसरा आनंद लतिका, चौथा प्रार्थना, छठा प्रेम चैतन्य प्रेम विलास, और 7वां देह निरूपण और राग लहरी। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 7, संख्या में कुछ गलती हो गई। कुल मिला के 7 ग्रंथ हैं इनके जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सारा जीवन इनका ग्रंथ लिखने में ही बीता। तो इस तरह से लोचनदास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ रह करके भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो हमारे समाज में ऐसे भी गृहस्थ होते हैं जो कि विवाहित होते हुए भी पत्नी के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और हमारे वैष्णव आचार्य जो है ऐसा भी आदर्श स्थापित करते हैं। और लगातार 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। परसों जो तिरुभाव था रामचंद्र कविराज का, तो वो भी पत्नी के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। कल तिरुभाव था जयदेव गोस्वामी का, उन्होंने भी पत्नी के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। और आज तिरुभाव लोचनदास ठाकुर का, तो उन्होंने भी पत्नी के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो अगर कोई भक्त ऐसा भी अगर करना चाहे तो उनके लिए ये भी एक प्रोत्साहन का कारण है। अब इनके चैतन्य मंगल से कुछ मैं कथा पढ़ के सुनाऊंगा। तो इसमें एक तो विशेषता ये है चैतन्य मंगल ग्रंथ की कि इसमें श्रील प्रभुपाद के बारे में संकेत प्राप्त होता है। श्री भगवान जो है चैतन्य अवतार धारण करने के पहले अपने धाम में हैं, तो अपने धाम में अपने भक्तों से ये सब बातें बताते हैं कि मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि भगवान बोल रहे हैं, सतयुग अधिक त्रेताए बड़े पाप, कि सतयुग से अधिक त्रेता में पाप बढ़ता है। वो भक्त कहाँ है जो जिसको मैंने कहा था, इधर इधर, हाँ। तो बंगाली में कुछ अगर कठिनाई हो तो आप बताएंगे, ठीक है। द्वापर ताहार अधिक ये बड़े संताप, तो सतयुग से अधिक पाप त्रेतायुग में बढ़ता है और द्वापर में और अधिक पाप बढ़ता है, तो ये बड़े संताप की बात है, ये बड़े दुख की बात है। कली घोर अंधकार ना ही धर्म लेश, और कलयुग में तो घोर अंधकार, धर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता। करुणा बाढ़े ले देखी सर्वजन क्लेश, तो सब जनों का जो है क्लेश दे करके करुणा बाढ़िल, यानी भगवान की करुणा बढ़ी है ना। अधर्म विनाश हेतु मोर अवतार, तो मेरा अवतार अधर्म के विनाश के लिए होता है। अधर्म बढ़ाए पुन की काज आमार, अगर धर्म अधर्म बढ़ता है तो फिर मेरा और क्या कार्य है, भगवान कह रहे हैं और क्या कार्य है, यही कार्य है कि अधर्म का नाश करो। ये क्षण जाने या दया उपे जले चित्ते, तो ये जान करके दया मेरे चित्त में उपजती है। जन्म लभे बने जय प्रेम प्रकाशित, तो मैं जन्म प्राप्त करूंगा अपना प्रेम प्रकाशित करने के लिए, है ना। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, भगवान कह रहे हैं कि चैतन्य अवतार में मैं क्या करूंगा, प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश करूंगा जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। मुझे भी लोके धर्मा धर्म विचारिया, और लोगों को समझाऊंगा धर्म और अधर्म का पूरा विचार, है ना, ठीक है ना। नवद्वीप जन्म हबे सचिर उदरे, भगवान पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने। नवद्वीप जन्म हबे सचिर उदरे, तो नवद्वीप में मेरा जन्म होगा, सची के उदर से जन्म होगा। गंगा र समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे, गंगा जी के समीप मेरा जन्म होगा और जगन्नाथ मिश्र के घर में होगा। तो पिता और माता का नाम बताया भगवान ने। अन्य अवतार है न अवतार नहीं, तो ये अवतार जो है दूसरे अवतारों की तरह नहीं है, है ना। असुर संहार है तो पृथ्वी विजय, कि जो अन्य अवतार हैं वो पृथ्वी में असुरों का संहार हेतु होते हैं, असुरों का संहार असुर पर विजय प्राप्त करने के लिए होते हैं। महाकाय महाअसुर महाअस्त्र मोर, तो जो बड़े बड़े शरीर वाले बड़े बड़े असुर हैं, महा शरीर वाले जो महाअसुर हैं उनके लिए मेरा महाअस्त्र है। महारणे प्रहार करिया करो चोर, और महायुद्ध में उन पर अपने महाअस्त्र का प्रहार करके उनको चूर्ण करता हूँ। तो ये अवतार का प्रयोजन है। एवे सही सर्वजन हृदय आसुरी, लेकिन इस समय तो सभी लोगों का हृदय आसुरी हो गया है। खड़गे अस्त्र छेद नहीं रणे की बा करे, तो खड़गे अस्त्र से उस हृदय का छेदन नहीं किया जा सकता, मतलब जो आसुरी हृदय है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता खड़े असुर से। रणे की बा करे, तो युद्ध करके मैं क्या करूँगा, भगवान बता रहे हैं कि इस अवतार में मैं युद्ध करके क्या करूँगा, क्योंकि तो खड़गे से अगर मैं छेदन करूँगा तो उनका शरीर का छेदन होगा या आसुरी हृदय का छेदन नहीं होने वाला खड़गे असुर से, खड़गे अस्त्र से। नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति, तो जो वैष्णव शक्ति एक है नाम गुण और संकीर्तन की, नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन रूपी जो एक बहुत बड़ी वैष्णव वैष्णवी शक्ति है। प्रकाश करीब आमी, तो मैं उसको प्रकाशित करूँगा, निज प्रेम भक्ति अपनी प्रेम भक्ति प्रकाशित करूँगा, तो इस अस्त्र के द्वारा मैं क्या करूँगा उनके आसुरी हृदय का छेदन करूँगा। यही मते कली पाप करीब और संघार, इस प्रकार से मैं कलियों के पाप का संघार करूंगा। सभी चल आगे पाछे ना करे विचार, तो भगवान कहते हैं कि आप सब लोग मेरे आगे और पीछे चलो और विचार मत करो। भगवान अपने पार्षदों से बोल रहे हैं अपने धाम में कि सब लोग कुछ मेरे आगे चलो कुछ लोग मेरे पीछे चलो। तो श्री चैतन्य से पहले कुछ पार्षदों का जन्म होना है और कुछ पार्षदों का जन्म बाद में होना है, तो आगे पाछे भगवान के सभी चल आगे पाछे ना करे विचार। ये भी नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया, तो नाम संकीर्तन का बड़ा तीक्ष्ण कठोर खड़ग लेकर के मैं क्या करूँगा। अंतर असुर जीवेर फेले बे काटिबा काटिया, तो जो अंदर है जीव के अंदर जो असुर है फेलेबा फेलेबो फेंकना घर जो भी हो, अंतर असुर जीव जीव के अंदर जो असुर है उसको मैं काटूंगा इससे इस अस्त्र से। जो सामान्य खड्ग होती है उससे नहीं काटा जा सकता है, वो जो आसुरी हृदय इतना कठोर है सामान्य अस्त्र से शरीर तो कट जाएगा लेकिन वो आसुरी हृदय नहीं कटेगा। तो इसके लिए बहुत तीक्ष्ण मुझे अस्त्र लेना है, और वो क्या है, नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन, और इस अस्त्र के द्वारा जो है मैं जीव के अंदर जो असुर है उसको काटूंगा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, अगर पापी लोग जो है धर्म को छोड़कर के दूर देश चले जाएंगे, तो जब भगवान चैतन्य आए है ना, तो उसके बाद बहुत से लोग जो है दूर देश चले गए, भारत से दूर चले गए, दूर देश जाए। मोर सेनापति भक्त जाए वे तथा है। तो मेरा सेनापति भक्त जो है वहां भी जाएगा, उनको पकड़ने के लिए वहां भी जाएगा, तो छोड़ेंगे नहीं, उनको भी छोड़ेंगे। तो भगवान चैतन्य जो है राजा हैं और प्रभुपाद जो है उनके सेनापति हैं। हाँ, और ये सब सेना है उनकी, यहाँ जो बैठे हुए भक्त हैं सब सैनिक हैं और सेनापति श्रील प्रभुपाद हैं। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा निज प्रेम भाषाएं ये ब्रह्मांड सब, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने प्रेम से भाषाए इन्हें डुबा दूंगा। निज प्रेम भाषाए ये ब्रह्मांड सब, तभु न राखी वे दुख शोक एक लव, तब जो है एक लव मात्र भी दुख और शोक नहीं रह पाएगा। मतलब पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर जाएगा। भाषाए स्थावर जंगम देव गणे, भाषाए यानी सबको डुबा दूंगा मैं अपने प्रेम में। स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब अचर और जंगम चर, चर और अचर सबको डुबा दूंगा और देव गणे और देवताओं को भी डुबाऊंगा उस प्रेम की बाढ़ में। सुनी आनंदित कहे ए दास लोचने, तो सुनकर के आनंदित होकर के लोचन दास वर्णन कर रहा है, है ना। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद के आगमन का संकेत मिलता है। अब कुछ लीलाएं यहाँ वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अभी तक इसका अनुवाद नहीं हुआ है हिंदी में, तो ये केवल हिंदी के शब्दों में लिखा है लेकिन बंगाली भाषा में ही सब लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ सुनाने की। दिन अवसाने संध्या काल यदि हैला, तो बीच से ही जो है मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ कि दिन का जब अवसान हुआ और संध्या काल आया, पूर्णिमार पूर्ण चंद्र गगन उदीला, तो पूर्णिमा की रात थी तो आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। हेन काली गौर चंद्र चतुर सुजान, उस समय गौर चंद्र ये भी दूसरे चंद्रमा है, गौर चंद्र है वो आकाश का चंद्रमा है, गौर चंद्रमा तो गौर चंद्र चतुर सुजान तो बहुत चतुर हैं, गौर चंद्र बहुत चतुर हैं, लीलाएं करते हैं। मामा बलि कांदे जैन बालक अज्ञान, तो जैसे अज्ञानी बालक हो मामा कह करके रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, माता माता। सची बले संध्या काले ना करे क्रंदन, तो सची माता क्या बोल रही कि संध्या काल में रो नहीं, क्रंदन मत करो। संध्या काल में विशेष रूप से घरों में लोग क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उस समय तो बिजली नहीं होती थी तो डब्बी लालटेन जलाया करते थे संध्या काल में, और सबको एक दूसरे से भगवान के नाम बोलते थे। ये हमारे घर में भी प्रथा थी जब मैं बहुत छोटा था, तो संध्या काल में तो माता सची भी कहते हैं कि रो नहीं, मतलब रोना अशुभ है। माता सची कहते हैं संध्या काले सची भले संध्या काले ना करे क्रंदन, जाहे चाहा ताहा दीबो सुन मोर धन, तो हे मेरे धन तुम जो कुछ भी चाहोगे वही मैं तुमको दूंगी, लेकिन तुम क्रंदन मत करो संध्या काल में। प्रभु कहे चांदे ते है हमारे पाड़िया, हमारे पाड़िया मतलब मेरे लिए आप चंद्रमा दीजिए। आप चांद पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा का चंद्रमा था, तो बालक ने कहा कि मेरे लिए आप चंद्रमा ला करके दीजिए। हंसी हंसी सची कहे अरे अबोधिया, अबोधिया कि अरे अबोध बालक, हंस हंस करके सची बोली अरे अबोध बालक, देखे थे कि ए पुत्र हैले मोर घर घरे, तो बड़े बड़े आश्चर्य की बात है ऐसा पुत्र मेरे घर में हुआ है। चांद की आकाशेर के हो धरी बारे पारे, कि आकाश के चंद्रमा को कौन पकड़ सकता है, तो तुम इतने अबोध हो कि तुम इतना भी नहीं जानते आकाश के चंद्रमा को कौन पकड़ सकता है। प्रभु बले बलि ले ये चाह, प्रभु बले बलि ये बलि ले ये यह चाहे तुम्हें ताहा दिवे एमन कही ले केने बाणी, तो भगवान बोले कि जब तुमने कहा कि तुम जो को चाहोगे वही मैं दूंगी तो फिर तुमने ऐसी बात बोली क्यों। यही लागी चांद नेते हैले मोर मन, इसी कारण से मेरा मन हुआ चंद्रमा को लेने के लिए तुम्हारे कहने से, ये तुम्ही ने कहा था कि जो को चाहोगे दूंगी, तो मैंने तो ये सोच करके मांगा कि तुमने जो कहा है वैसा होगा। तो भगवान जो है बात को पकड़ लेते हैं। एही लागि चांद नीते हैला मोर मन यहाँ बलि उच्च करी करे रोदन। और ये कह करके खूब ऊंचे स्वर में रोने लगे, बालक रोने लगा। आंचले धरिया कांदे नाना खटी करे। अब माता जो है गोद में लेकर के जो है कांदे मंद बालक रंदन कर रहा है, नाना खटी करे, खटी तब जिद कर रहा है, नाना प्रकार की जिद कर रहा है बालक और क्रंदन कर रहा है। चरण आछाड़े करे नयाने कचाले, कचाले चरण आछाड़े यानी पैरों को फेंक रहे हैं बालक जो है, पैरों को फेंक रहा है और नयाने कचाले नेत्रों को मीज रहा है, नयाने कचाले ऐसे होगा। हाँ, नेत्रों को जो है रगड़ रहे हैं, अपने आंखों को रगड़ रहे हैं। अगर आंसू ना निकले तो आंसू और निकालने के लिए नेत्रों को रगड़ रहे हैं। मायरे गलाए धरी कांदे गोरा राय। माता का गला जो है पकड़ लिया और रोने लगे बालक जो है, अब क्रंदन कर रहा है माता का गला पकड़ करके। खेला करी बारे आकाशे रे चांद चाय। खेलने के लिए आकाश का चंद्रमा चाहिए मुझको। छड़े खटी छड़े लुटी मायर चूल छिंडे। क्या मतलब छड़े खटी? छड़ में रुष्ट होता है मायर, चलो जो भी हो। धुलाए धुसर कर हाने निजे मुंडे। और अपना जो है पूरा धूल में शरीर को उन्होंने धूसरित कर दिया और अपने सिर को पटकने लगे, जमीन में सिर को फोड़ने लगे, है ना। हाने निज मुंडे, है ना, यही में अपने सिर फोड़ने लगा बालक। हाँ हाँ हाँ, वो था ना पाषाणे कुटी वो माथा, वो आया था उसमें वैष्णव के वियोग में। यहाँ भगवान चंद्रमा के वियोग में अपना माथा फोड़ रहे हैं। चंद्रमा भी जो है उनका भक्त है, चंद्रवंश में उन्होंने जन्म लिया था। देखिया जननी बले अबोधिया पुत। तो माता देख करके बोली कि अबोधिया पुत, कि हे अबोध बालक, तुम्हारा चरित्र मोरे करे अद्भुत। तुम्हारा चरित्र तो मुझे बहुत चकित कर रहा है ना। आकाशे रे चांद कथी पाव धरी बारी। आकाश का चंद्रमा कैसे मैं पकड़ सकती हूँ? ओहन कथे के चांद तुम्हारे शरीर। तो माता को ऐसी बुद्धि मिली, क्या बोली माता, कि तेरे शरीर में तो बहुत से चंद्रमा है, तेरे शरीर में तो बहुत से चंद्रमा है। जानते कितने चंद्रमा है भगवान के शरीर में? ये जो है 10 नाखून है, 2 हाथों के 10 नाखून है, 10 चंद्रमा है, और 2 पैरों के 10 नाखून, 10 चंद्रमा, ये कितने चंद्रमा हो गए? 20 चंद्रमा, और एक मुख चंद्र 21 चंद्रमा तो हो गए। और भी चंद्रमा है उनके शरीर में। जो भी हो, तो हाँ, तो इस तरह से कम 21 चंद्रमा तो है ही है। तो माता बोले कि तेरे शरीर में तो कितने चंद्रमा है। और हेर देखे लाजे चांद मलिन हायल। वो चंद्रमा तो देख करके, तेरे चंद्रमाओं को देख करके मलिन हो गया है, मलिन हो गया है, इसका मतलब शर्मिंदा भी, शर्मिंदा हो गया है, मलिन हो गया, मतलब उसका तेज खत्म हो गया, छीण हो गया तेज उसका। तेरे चंद्रमाओं को देख करके उस चंद्रमा का जो तेज है वो छीण हो गया है, मतलब शर्मिंदा हो रहा है। ना बुझिया तोर आगे उदय करेल। और तेरे आगे वो उदय होने में भी समर्थ नहीं है, उदय नहीं हो रहा है। ना जाने या नवद्वीप चांदे रे उदय। और चंद्रमा सोच रहा है कि पता नहीं नवद्वीप में कौन से चंद्रमा का उदय हो गया है। लज्जा पाया मेघे रे भीतर गया रहे। और लज्जा का पाकर के वो मेघों के भीतर चला गया, छिप गया है ना। तो उसको तुम क्यों पाना चाहता है? तो माता सची बड़ा अच्छा उनको जो है एक उत्तर मिल गया कि उस चंद्रमा को तो क्यों पाना चाहे, तो वो वैसे ही लज्जा के कारण छिप रहा है, मेघों के बीच में छिप रहा है, लज्जित हो रहा है, उसको तुम क्यों पाना चाहता है। नवद्वीप हाउ आयल सुना बचन, ना कंधी है आरे बाप हमारे जीवन। यह बलि कोले करी चुंब दे मुखे, आपना पसारे देवी प्रेम आनंद सुखे ना। तो इस तरह से बालक को जो है अब कोई कारण नहीं मिला रोने का, क्योंकि उन्होंने, माता ने जो है बताया कि तेरे जो चंद्रमा है वो चंद्रमा से ज्यादा चमकीले हैं, हाँ, ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो चंद्रमा जो है लज्जित हो रहा है, मलिन हो रहा है, छिप रहा है, हाँ? तो इस तरह से बालक को जो है उन्होंने बहला दिया। आनंद सानंद देवी संपद बिहला देखे विदिक नाही देखी पुत्र लीला अंतर उल्लास देवी गदगद भास है। तो अंदर में उल्लास है, हाँ, माता का, और वाणी जो है गदगद हो गई। हाँ, जब माता जो है बालक से बोलती है तो उसकी वाणी गदगद हो गई। गोड़ा गुण गाए सखे ये लोचन दास। हाँ, तो इस प्रकार से लोचन दास गौर का गुणगान करते हैं। एक और मैं लीला सुनाऊंगा। ये लीला जो है काफी, जब भगवान तरुण हो गए हैं और संकीर्तन का जो है प्रचार कर रहे हैं उस समय की बात है। तबे निजे घरे प्रभु बसी दिव्या सने। तो प्रभु जो है अपने घर में हैं और दिव्य आसन के ऊपर बैठे हैं, यानी ईश्वर भाव में। तो भगवान जो है कभी ईश्वर भाव में होते हैं तो अपने सब रहस्य बताते हैं, हैं? और जब भक्त के भाव में होते हैं तो भक्तों के भी चरण लेते हैं, अपने भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर में लगाते हैं। तो दोनों भाव भगवान के जो है बड़े दिव्य होते हैं। ईश्वर भाव में होते हैं तो अपने चरण भक्तों के सिर में रखते हैं, और जब भक्ति भाव में आते हैं तो भक्तों के चरण अपने सिर में रखते हैं। और दोनों स्थितियों में भगवान बहुत प्रबल हैं, कोई विरोध नहीं कर सकता उनका। तबे निजे घरे प्रभु बसी दिव्या सने। तो अपने घर में भगवान जो है दिव्य आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। चौधरी के बेड़ी आछे निजे भक्त जने, और चारों तरफ उनके भक्त जो है उनको घेर करके बैठे हैं। श्रीवास से देखिया प्रभु कैला एक उक्ति। अब श्रीवास की तरफ देख करके भगवान ने एक बात बोली, तुम्हारा नाम है रे तुम्ही की जाने व्युत्पत्ति। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे नाम की जो व्युत्पत्ति है, यानी किस प्रकार का अर्थ है, वो क्या तुम जानते हो। श्रीवास से भगवान ने कहा कि तुम क्या अपने नाम का अर्थ जानते हो, तुम्हारा नाम कैसे बना है, किस अर्थ को लेकर के तुम्हारा नाम बना है। श्रील भक्तिर तुम्ही केवल आवास। हाँ, श्री का मतलब क्या है, भक्ति देवी। श्री का मतलब है भक्ति देवी, और तुम केवल भक्ति के ही आवास हो, यानी निवास, तुम्हारे अंदर भक्ति निवास करती है। श्रील भक्तिर तुम्ही केवल आवास एते के बलिय तोर नाम से श्रीवास। इस कारण से तुम्हारा नाम श्रीवास है। श्री का मतलब भक्ति, और भक्ति का जहाँ वास है वो श्रीवास है, वो तुम ही हो, भक्ति जहाँ वास करती है। तबे तक कहिले प्रभु देखी गोपीनाथे। तब गोपीनाथ को देख करके भगवान बोले, आमारे भक्त है तुम्ही भूल मोर साथे। तो मेरे भक्त हो भूल मोर साथे। चलो, मुरारी देखी है प्रभु भले पुनर्वार। अब मुरारी को देख करके, मुरारी गुप्त को देख करके भगवान जो है फिर बोले, पढ़ा आपन श्लोक सुनी बे तुम्हार। भगवान कहते हैं उनसे, मुरारी गुप्त से, कि अपना श्लोक पढ़ के सुनाओ, मैं सुनूंगा। तुमने जो श्लोक लिखा है, जिस श्लोक की रचना की है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाओ। ये बोले सुनने से मुरारी चतुर पढ़ाई कवित्व निजे सुना ये ठाकुर। तो भगवान के इस आदेश को सुन करके चतुर मुरारी गुप्त ने अपना जो है कविता पढ़ करके सुनाई। पढ़ाई कवित्व निजे, यानी अपनी कविता पढ़ करके सुनाने लगे। सुनाए ठाकुर, और ठाकुर सुन रहे हैं, हाँ, भगवान चैतन्य सुन रहे हैं। अब चैतन्य चरित्र द्वितीय प्रक्रम सप्तम स्वर्ग, सप्तम सर्ग, सर्ग में ये जो रघुवीर अष्टक उन्होंने लिखा है, तो सातवां और आठवां श्लोक जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं। राजत किरीट मणि दीधिति दीपिताशम उद्यन बृहस्पति कवि प्रतिमे विहंत द्वे कुंडलिंकर शितेंदु समान वक्त्रम रामम जगत्रय गुरुम सततम भजामि उद्यन दिभाकर मरीचि विभोदिताब्ज नेत्रम सुबिंबित सनच्छद चारुनाशम शुभ्रांशु रश्मि परिनिर्जित चारुभासम रामं जगत्रय गुरुं सततं भजामि। जिनके मुकुट में स्थित मणियों से प्रकाश निकलता है और समस्त दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं और जिनके कानों में दो कुंडल बृहस्पति और शुक्राचार्य जैसे तेजस्वी हैं, जिनके कानों के दो कुंडल बृहस्पति और शुक्राचार्य जैसे तेजस्वी दो कुंडल हैं और जिनका मुख कमल, जिनका मुख निष्कलंक चंद्रमा के समान है, ऐसे तीनों लोगों के गुरु श्री राम का मैं भजन करता हूँ, जिनके दोनों नेत्र ऐसे हैं मानो सूर्य की किरणों के द्वारा कमल खिल रहे हैं, सूर्य की किरणों से कमल जब खिलता है, ऐसे जिनके नेत्र हैं प्रफुल्ल और मनोहर हैं, जिनकी दोनों ओठ सुपक्व बिंब फल के समान हैं, पके हुए बिंबा फल के समान जिनके दोनों ओठ हैं, जिनकी नासिका परम मनोहर है और जिनकी हंसी चंद्र किरण के माधुर्य को पराजित करती है, ऐसे तीनों लोगों के गुरु श्री राम का मैं सर्वदा भजन करता हूँ। तो तीन दो श्लोक उन्होंने सुनाए, रघुवीर अष्टकम, आठ श्लोक, अष्टक का मतलब आठ श्लोक होते हैं, तो उन्होंने दो श्लोक सुनाए। यही मते रघुवीर अष्टकम श्लोक सुनी, इस प्रकार से रघुवीर अष्टक के श्लोकों को सुन करके मुरारी मस्तक के पद दिलाता आपनी, तो भगवान ने मुरारी के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। रामदास बलि नाम लिखीला कपाले, और उनके कपाल यानी माथे में रामदास नाम लिख दिया भगवान ने, मुरारी गुप्त के माथे में रामदास नाम लिख दिया। मोरे पर साधे तुम्ही रामदास हैले, मेरी प्रसन्नता से तुम रामदास बन गए हो। रघुनाथ बिने तुम्ही तिले के ना जिए हो, रघुनाथ के बिना श्री राम के बिना तुम तिल मात्र भी नहीं जीते हो, तुम्हारा जीवन तिल मात्र भी नहीं रामदास के बिना, तिल जानते बहुत छोटा सा, तो तिल मात्र भी तुम जीते नहीं हो राम के बिना। मोई तोर रघुनाथ है जाने है निश्चय, तो मैं ही तुम्हारा वो रघुनाथ हूँ ये निश्चित रूप से जान लो। हरि बोल। भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा वो राम हूँ निश्चित रूप से जान लो। यह बलि राम रूप देखा ही ले तारे, और इस प्रकार से बोल करके केवल बोला नहीं है, दिखा भी दिया, श्री राम का रूप भी दिखला दिया। यह बलि राम रूप दिखाई ले तारे, जानकी सहित सांग पांग सब मिले, उनके साथ में माता सीता भी हैं और अंग और उपांग सहित सब भगवान राम के जो परिकर हैं, जैसे लक्ष्मण जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, अंगद हैं, विभीषण हैं, सब परिकर, सबका दर्शन कराया इनको। स्तव करे मुरारी पड़ी या पद तले, तो मुरारी जो है स्तुति करते हुए इनके चरण के नीचे लेट गए। जय जय रघुवीर सचिर कोंगरे, तो रघुवीर के जय हो जो सचिर सची माता के गर्भ से जन्मे, मेरे ही रघुवीर सची माता के गर्भ से जन्मे। बार बार उठे पड़े लुटाए धरणी, मुरारी को बार बार उठते हैं और फिर से पृथ्वी में लौट जाते हैं, लोटपोट होते हैं। बार बार उठे पड़े लुटाए धरणी, बहुविध स्तव करे अनुनय वाणी, और कई प्रकार से स्तुति करते हैं और अनुनय की वाणी बोलते हैं। मुरारी के कृपा करी बलीला वचन, तो मुरारी के ऊपर कृपा करके भगवान ये वचन बोले, आमारे भक्ति बिनु न जानी है आनो, तो हमारी भक्ति के बिना और तुम कुछ मत जानना, मतलब और जानने लायक कुछ है ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज ज्ञात्वा नेह भूयुन्यत ज्ञातव्यम अवश्य से दे। धन्यवाद। जिसको जान करके इस जगत में और कुछ भी जानने लायक नहीं रहता। यस ज्ञात्वा नेह भूयो न्यच ज्ञातव्यम अवशिष्यते, है ना। तो भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं मुरारी गुप्त को, हमारे भक्ति बिनु न जाने ही आन, तो हमारी भक्ति के बिना और तुम कुछ नहीं जानना। यदि तोर इष्ट आमी हई रघुनाथ, यदि तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे इष्ट मैं ही हूँ, जो रघुनाथ तुम्हारे इष्ट, तुम्हारा इष्ट मैं ही हूँ। तथापि यह रस आस्वादी है राधानाथ, फिर भी राधानाथ के रस का आस्वादन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा इष्ट देव श्री राम हूँ, तो मेरी आज्ञा से तुम क्या करो, राधानाथ यानी कृष्ण के रस का आस्वादन करो। भगवान कहते हैं संकीर्तन धर्मे राधा कृष्ण गाओ जाइया, संकीर्तन धर्म में राधा कृष्ण का गान करते रहो। करी है आमाते भक्ति सुन मन दिया, और हमारी भक्ति करो सुन मन दिया, अपने मन को दे करके जो भी हो। यह बलि श्लोक एक बलि ले निजे, ये बोल करके अपना स्वयं का एक श्लोक भगवान ने पढ़ के सुनाया। मोर एक श्लोक सुन श्री निवास द्विज, तो मेरा एक श्लोक सुनो हे ब्राह्मण श्रीनिवास, यहाँ श्रीनिवास का मतलब श्रीवास, श्रीवास ब्राह्मण से भगवान कहते हैं मेरा एक श्लोक सुनो। अब भगवान का एक श्लोक कौन सा है, श्रीमद् भागवत में उन्होंने बहुत से श्लोक बोले उद्धव जी को, अर्जुन को भगवान ने गीता में बहुत से श्लोक बोले तो वो उनके ही श्लोक हैं, और भागवत में भी उद्धव जी को बहुत से श्लोक भगवान ने सुनाए हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा एक श्लोक सुनो श्रीनिवास द्विज। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा हे उद्धव, मेरे प्रति भक्ति जिस प्रकार मुझको वशीभूत करती है, योग सांख्य धर्म कर्म वेद पाठ तपस्या और वैराग्य मुझको उस प्रकार वशीभूत नहीं कर सकते। तो भगवान उद्धव जी को जो श्लोक सुनाया वो श्लोक भगवान कहते मेरा श्लोक सुनो। पढ़िया कहिल सुन सुन सर्वजन, तुम्हारा करी है ए मत आचरण। तो भगवान क्या कहते हैं, सुन सुन सर्वजन, सभी लोग सुनो सुनो, तुम्हारा करी है ए मत आचरण, क्या मतलब, चलो जो भी हो। श्रीनिवास पंडित तेरे कथा अनुसारी, श्रीनिवास पंडित के वचन के अनुसार, आदेश के अनुसार, कथा का मतलब आदेश है ना, श्रीनिवास पंडित के आदेश के अनुसार करी है आमाते भक्ति सुख पावे बड़ी। आप सब लोग जो है श्रीनिवास पंडित की आज्ञा के अनुसार हमारी भक्ति करो तो बहुत सुख प्राप्त करोगे। तो भगवान जो है ये विधि बता रहे हैं कि मेरी भक्ति की विधि क्या है, श्रीनिवास पंडित की आज्ञा के अनुसार हमारी भक्ति करो तो बहुत सुख प्राप्त करोगे। श्री राम पंडित सुन हमारे वचन, श्री राम पंडित श्रीनिवास के छोटे भाई हैं, तो भगवान के श्री राम पंडित सुन हमारे वचन कि हे श्री राम पंडित तुम हमारे वचन को सुनो। तुम्हारा ज्येष्ठेर सेवा हमारे अर्चन, तुम्हारे बड़े भाई की जो सेवा है वही हमारी पूजा है। भगवान कह रहे हैं श्री राम पंडित से कि तुम्हारी जो बड़े भाई की पूजा है वो हमारी पूजा है। एते के जानी कर श्रीवासेर सेवा, ये जान करके श्रीवास की तुम सेवा करो। यह हिते पावे तुम्हें मोर पद प्रभा, इस प्रकार से तुम मेरे चरण कमलों की प्रभा प्राप्त करोगे। प्रभा का मतलब तेज है ना, तो मेरे के चरण कमलों का तेज या आश्रय प्राप्त करोगे। एते के कहिले प्रभु भगत वत्सल, तो ऐसा भक्त वत्सल प्रभु ने कहा, करुण अरुण आँखी करे छल छल। भगवान की, भगवान के नेत्र करुण है और अरुण है, अरुण माने लाल, लाल नेत्र ये नेत्रों की शोभा है, भगवान के लिए नेत्र लाल हैं, करुण अरुण नेत्र, उनके नेत्रों में करुणा है और अरुणा यानी लाली है और करुणा है। करुण अरुण नेत्र, करुण अरुण आँखी करे छल छल, छल छल हो रहे हैं यानी अश्रु बह रहे हैं, भगवान के नेत्रों से करुणा के अश्रु बह रहे हैं। तभी से ही श्री निवास पंडित चतुर, तब श्रीनिवास पंडित यानी श्रीवास पंडित जो चतुर हैं निवेदन कले कैले दुग्ध है भुंजये ठाकुर, तो उन्होंने जो है निवेदन किया दूध का भोग लगाने के लिए। 10 मिनट में हरे कृष्णा। तो जिन भक्तों को मेरठ की रथ यात्रा में जाना है 10 मिनट के अंदर बस निकलने वाली है वे जा सकते हैं। निवेदन कैले दुग्ध भुंजये ठाकुर, तो उन्होंने जो है श्रीवास पंडित ने दूध का भोग लगाने के लिए प्रार्थना की भगवान से। गंध चंदन माल्य सुवासित धूप निवेदन करी दिल नैवेद्य सम्मुख, तो समय श्रीवास पंडित गंध चंदन और माला और सुगंधित धूप लाए और सामने सब कुछ अर्पित किया भगवान को। ग्रहण करी ले प्रभु आनंदित मने, तो भगवान ने आनंदित होकर के वो सब ग्रहण किया। अवशेष दिले जत निज भक्त जने, और जो अवशेष था वो अपने सब भक्तों को बांटा भगवान ने, बांटा अपने अपने हाथ से। यही मत कौतुक के सकल निशा गीला, इस प्रकार के कौतुक में पूरी रात्रि बीत गई। इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तार से किया है ना, जिसे कहते हैं सप्त प्रहरिया प्रकाश, 7 प्रहर का प्रकाश था और 7 का मतलब 21 घंटे है ना, 21 घंटे जो है भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया था ना। तो यहाँ लिखा है कि यही मत कौतुक के सकल निशा गेला, इस प्रकार के कौतुक में पूरी रात्रि बीत गई, भक्तों को पता नहीं चला रात्रि कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। प्रभाते उठिया प्रभु घरे रे चलिल, तो सवेरा दिन का प्रकाश हुआ तो भगवान उठे और अपने घर चल दिए, क्योंकि ये घर उनका नहीं है, किसका घर है, श्रीवास का है, तो भगवान अपने घर चल दिए। स्नान देवार्चन सबे कैला निज घरे, अपने घर में जाकर के स्नान किया और देवार्चन यानी कृष्ण का पूजन किया। पुनरअपि गेला पादाम्बुज देखा बारे, और फिर से पहुंचे पादाम्बुज देखा बारे, मतलब अपना अपने चरण कमल का दर्शन कराने के लिए। फिर से हासिया कहिल प्रभु सुन अद्भुत, और हंस करके भगवान सब भक्तों से बोले कि सुनो एक अद्भुत समाचार। अपने भक्तों से भगवान कहते हैं कि आप सब लोग एक अद्भुत समाचार सुनिए। आइल श्रीपाद नित्यानंद अवधूत, कि श्रीपाद नित्यानंद अवधूत आ गए हैं, ये पहला समाचार, अभी तक कोई भक्त जानते नहीं इनको। ताहारे महिमा तत्व के कहीं ते जाने, उनकी महिमा का तत्व कौन कह सकता है। बड़े पुण्य भाग्य आज देखी भी नया ने, आज बहुत बड़ा जो है पुण्य का उदय हुआ है कि अपने नेत्रों से उनका दर्शन हम लोग करेंगे, भगवान करें। हेरे राम नारायण मुरारी मुकुंद सत्वरे जाना हा को था आछे नित्यानंद, क्या मतलब, हेरे राम नारायण मुरारी मुकुंद, इन सब भक्तों को बता रहे, भक्तों के नाम ही है, कि सत्वरे जाना हा को था आछे, कि जल्दी पता लगाओ कि नित्यानंद कहाँ पर हैं। सत्वरे माने जल्दी, जाना हा यानी जानो, कोथा आछे वे कहाँ पर, हाँ कहाँ पर आए हैं नित्यानंद, लेकिन आ गए हैं लेकिन जल्दी पता लगाओ कि कहाँ पर आए। ये तो समाचार है कि वो आ चुके हैं, लेकिन अब किस घर में वो हैं जल्दी पता लगाओ। हेन रूपे महाप्रभु आज्ञा जबे कैला, इस प्रकार से जब महाप्रभु ने आज्ञा दी, सत्तोरे चलिया ग्राम दक्षिणे चाहिला, तो सत्तोरे चलिया ग्राम दक्षिणे चाहिला, दक्षिण दिशा में गए, दक्षिण दिशा की ओर गए। विचारे करी अलाग ना पाई ले तार, तो बहुत विचार किया है लेकिन पता नहीं लगा। पादाम्बुज सन्ने कटे आइला पुनर्वार, तो भगवान के चरण कमलों में फिर से आ गए, ये पता नहीं चला। भक्त लोग गए पता लगाने के लिए लेकिन फिर से आ गए लौट करके। करे जोड़ करी कहे ठाकुर एर आगे, तो हाँ जोड़ करके ठाकुर यानी महाप्रभु के आगे बोले। विचारे करी या प्रभु ना पाई ले लागे, क्या नहीं मिले, आप विचार करिए वो तो मिले नहीं हमको। पुनरपि कहे प्रभु सुन सर्वजन, तो भगवान फिर से सबको कहते हैं सब लोग सुनो। विचारे कर सबे अपने आश्रम, अपने अपने आश्रम में जाकर विचार करो। जो भी हो, प्रभुर आज्ञा है सबे चलीला सत्वर। तो भगवान की आज्ञा लेकर के सब लोग जल्दी चले, एक एक गेला सबे आप नार घर, सब अपने अपने घर गए। संध्या काले संध्या करी एकत्र हैया, संध्या काल में संध्या करके सब एकत्र हुए। प्रभु विद्यमान है सबे मिली ला आसिया, तो भगवान जहां पर हैं सब भक्त वहां पर मिले। पथे जाइते मुरारी बलिया डाके पहुं, पथे जाइते मुरारी बलिया डाके पहुं, रास्ते में जाते हुए मुरारी से बोले डाके, ना देखी ले अवधूत बलि हासे लहू, ना देखे ना देखी ले अवधूत, अवधूत को ना देख करके बलि हासे लहू, बोल करके हंसे, भगवान हंसने लगे। नंदन आचार्य घरे आछे महाशय, नंदन आचार्य के घर में महाशय हैं, आमी है जाए तथा कही निश्चय, और हम भी जाएंगे वहां पर, निश्चित रूप से हम भी जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि आप लोग अकेले नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये बोले सुनिए सबे हर्षित हैया, तो ये जब बात सुनी तो सब हर्षित हो गए। चलीला ठाकुर संगे जय जय दिया, तो सब जो है ठाकुर के संग में चलने लगे और जय जय कारा कर रहे हैं सब लोग। पथे जाइते घन घन हरी हरी बोल, हरी हरी, तो रास्ते में चलते हुए सब लोग जो है घन घन का मतलब घना बार बार हरी हरी बोल रहे हैं। अंग पुलकित कंठे गद गद रोल, शरीर पुलकित है और कंठ गदगद हो रहा है सबका। नयने गले नीर सात पांच धारा, नेत्रों से आंसुओं की पांच और सात धाराएं निकलती हैं, ऐसा कभी आंसू होता नहीं एक धारा निकलती वो भी गाल से जो है चिपक करके चलती है आंसुओं की, है ना, लेकिन पांच सात धाराएं आंखों से ऐसे निकलती हैं पिचकारी की तरह निकलती हैं, है ना। नयने गले नीर सात पांच धारा, चलित न पारे प्रेमे सोनार किशोरा, तो प्रेम के कारण सोनार किशोर, न तो सोने का जो युवक है, यानी भगवान सोने के युवक हैं, स्वर्ण के बने हुए युवक हैं, वो चल नहीं पाते हैं। पांच धाराएं सात धाराएं एक एक आंख से निकल रही है, पिचकारी की तरह निकल रही है, तो चल नहीं पा रहे हैं। सोनार किशोरा, यानी सोने का जो युवक है वो चल नहीं पा रहा है। क्षण सिंह पराक्रमे पदचारी जाए, क्या मतलब क्षण सिंह पराक्रमे, क्षण भर में तो शेर के पराक्रम से पदचारी जाए, चार पैरों से चलते हैं, पता नहीं जो भी हो। मत करी बर जैन उलटी न चाहे, करीबर करी मत करीबर, करी का मतलब हाथी है, मत वाले हाथी की तरह भी, हाँ ऐसे ही कुछ है। नव जल धरे जैन गंभीर निनाद, तो उनका जो है जो आवाज है वो नवीन बादल के समान गंभीर आवाज है। घन घन हुंकार आनंद उन्माद, और घन घन बार बार हुंकार करते हैं, आनंद के उन्माद में बार बार हुंकार कर रहे हैं। ए माने आनंद सानंद चली जाए, इस प्रकार से आनंद पूर्वक चले जा रहे हैं। देखी ले तावधूत नित्यानंद राय, और समय नित्यानंद राय अवधूत का दर्शन किया। आरक्त गौरांग कांति परम है सुंदर है, आरक्त गौरांग कांति मतलब उनकी कांति जो है गौरांग है और कुछ लाली भी होगी, आरक्त है ना, आरक्त गौरांग कांति परम है सुंदर झलमल अलंकारे अंग मनोहर, उनके शरीर में जो है आभूषण झलमल कर रहे हैं, चमक रहे हैं आभूषण, चमक रहे हैं और शरीर भी बड़े मनोहर हैं। कटी तटे पीत वास विराजित शोभा, पीत वस्त्र धारण किए हैं कमर में शोभा है। सिर लटपटी पाग चंपकेर आभा, और सिर में जो है पगड़ी है लटपटी पाग है? मतलब लपेटी हुई है, पगड़ी लपेटी हुई है, चंपकेर आभा चंपक के फूल जैसी वो पगड़ी है, शोभा है, पगड़ी की शोभा चंपक के फूल जैसी है। चलिते नूपुर पदे झन झन सुनी, जब चलते हैं तो चरण में जो नूपुर की आवाज है वो झनझन ये सुन करके कुरंग न ही नहीं चित्त तरल संधानी, खैर जो भी हो ये तो काफी विस्तृत वर्णन है, तो मैं आपको कुछ नमूना बता रहा था चैतन्य मंगल का, तो अभी समय हो चुका है, एक दो मिनट का समय भी है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न? हाँ,
ये तो चैतन्य,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हाँ हाँ ठीक है।
चैतन्य मंगल तो बाद में लिखा है, माफ कीजिए,
चैतन्य मंगल बाद में लिखा। हाँ,
भविष्यवाणी जो कर रहे हैं,
हाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं। चैतन्य मंगल में इन्होंने जो है भगवान की भविष्यवाणी बताया। अवतार के पहले भी भगवान ने जो है अपने पार्षदों को क्या क्या बातें बोली हैं वो सब लिखा है इसमें, ठीक है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में भी दसम स्कंध में आता है, भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग यदुवंश में जन्म लो और मैं यदुवंश में अवतार लूँगा, वसुदेव के घर में अवतार लूँगा, तुम लोग मेरी लीला में सहायता करना। उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में भक्तों को बोल रहे हैं।
चैतन्य उपनिषद में भी ऐसा,
अरे एक बैग गुम हो गया है, बैग ना क्या लिखा, एक बैग गुम हो गया है जिसमें बुक मैराथन लिखा है, उसके अंदर आईडी और पार्स कृष्ण जोहरी नाम से आईडी है और भगवद गीता कृष्ण बुक भी है, यदि किसी को मिले तो गार्ड को दे दें, धन्यवाद, ठीक है। श्री रोचनदास ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हरिओम।